शांति। गुड इवनिंग। एक छोटे देश के प्रेसिडेंट को अमेरिका जाना था, तो लोगों ने कहा कि देखो तुम अमेरिका जाते हो, थोड़ा सा इंग्लिश सीख के जाओ, क्योंकि कई देशों में लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। का दो लाइन भी तुम इंग्लिश सीख के जाओ। तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, तो उनको जब तुम मिलोगे तब अगर दो शब्द भी तुम इंग्लिश में बोलोगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। लोगों ने कहा सरल सी बात है, देखो ये दो वाक्य तुम सीख लो, पहले जब तुम प्रेसिडेंट को मिलोगे तब उनको बोलना हाउ आर यू, तो फिर वो कुछ जवाब देगा, और जब वो जवाब दे तब कहना सेम एज यू, तुम्हारे जैसे ही मैं हूं। आप कहोगे हाउ आर यू, तो कहेगा आई एम फाइन, तुम कहना सेम एज यू। तो उसने कहा ठीक है, बड़ा सरल है, मैं ये दो लाइन है वो रट लूंगा। तो रास्ते में प्लेन में वो रटने लगा, हु आर यू सेम एज यू हु आर यू, लेकिन बेचारा भूल गया। बीच में उसका हो गया, उसको बोलना था हाउ आर यू, परंतु हाउ आर यू करते करते वो कहने लगा हु आर यू हु आर यू हु आर यू। तो उसने तो बड़ी अच्छी से रट लगाई थी। तो जैसे ही अमेरिका पहुंचा और बिल क्लिंटन को मिला तो उसने कहा हु आर यू। तो बिल क्लिंटन को लगा मेरे ही देश में आके मुझे पूछता है हु आर यू, इसको मैं ठीक करता हूं। उसने कहा आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी क्लिंटन, तो उसने कहा सेम एज यू। तो देखो डर से क्या हालत होती है, जो लोग इंग्लिश जानते हैं पूरा समझ गए होंगे। तो इसलिए डर से मुक्ति प्राप्त करनी है और निर्भय बनना है। और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के साथ साथ सोचना भी, और सोचने के साथ साथ उसको फील भी करना। हंसने की बात हो तो हंसना भी और रिस्पांस भी देना। जितना आप अच्छा रिस्पांस देंगे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, अभी यहां पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी है, जरा खड़ा होंगे। हाँ खड़े हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी। अच्छा हाँ, कोई ऐसा है जिसको डर नहीं लगता एग्जाम का? हाँ सबको डर लगता है। कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी है सिर्फ दो विद्यार्थियों को डर नहीं लगता है। एक तो वह विद्यार्थी कि जिसको पक्का है कि उसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है, और दूसरा वह विद्यार्थी जिसने पहले से ही तय कर लिया है कि मुझे फेल होना है। और ऐसा कोई नहीं होता, इसलिए सबको डर लगता है। भले बैठिए, यहां पर उपस्थित हर आत्मा मेरे सहित और इस विश्व में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसे डर न लगता हो। परंतु अच्छे समाचार है कि हम डर पर परिवर्तन प्राप्त करके निर्भय बन सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं सोच सकता हूं वह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने समय के एक सबसे निर्भय व्यक्ति थे, किसी से भी नहीं डरते थे। परंतु जब जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब उनको इतना डर लगता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक नियम होता था कि एक सप्ताह में हर विद्यार्थियों को एक प्रवचन देना है। हर विद्यार्थी को एक प्रवचन एक सप्ताह में जरूर देना है। जो विद्यार्थी प्रवचन नहीं देगा उसको फाइन भरनी पड़ेगी। तो यंग जवाहरलाल नेहरू फाइन भर देते थे परंतु प्रवचन देने से उनको डर लगता था। यह उदाहरण इसलिए दिया कि वह वही आत्मा है कि जब उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया तो उनके समय के वह एक सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन गए। मैं आपको जल्द ही 12 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। हां सब ध्यान से सुन रहे हैं कि शांतिवन में चक्कर लगा रहे हैं? सुन रहे हैं? अच्छा, मेरे जैसे एक प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क है, तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा सर आप बोल रहे हैं वह सत्य है, आप समझते हो कि हम सुन रहे हैं तो आपका भ्रम है। हाँ, मेरा भ्रम तो नहीं ना कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, तो ध्यान से ये 12 पॉइंट को सुनना, इन 12 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सचमुच आज ही निर्भय बन जाएंगे। सबसे पहली बात कि डर से कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी बात का डर हो। जैसे उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों को खड़ा किया था कि अगर आपने एग्जाम में इतनी तैयारी की है कि आपको 60% मिलेंगे, अगर आप निर्भय होकर के जाएंगे तो कम से कम तो आपको 60% तो मिलेंगे, परंतु डर के जाएंगे तो शायद लूज मोशन हो जाएंगे। ये एग्जाम के दिनों में कुछ विद्यार्थियों को फीवर हो जाता है, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन फीवर। इसका और कोई कारण नहीं होता है, डर के कारण ही उन्हें बुखार भी आ जाता है। तो इसलिए डर से कोई फायदा नहीं। कोई बड़े व्यक्ति को आपको सेंटर पर निमंत्रण देने के लिए जाना है, अगर आप निर्भय होकर के निमंत्रण देंगे तो थोड़ी तो संभावना है कि वह सेंटर पर आएगा, परंतु आप निमंत्रण ही देने के लिए नहीं जाएंगे तो वह आ ही नहीं सकता है। जब मैं छोटा था और ज्ञान में आया तो देखा कि एक अनपढ़ माता थी, वो कई डॉक्टर्स को सेंटर पर ले आती थी कोर्स कराने के लिए। मुझे आश्चर्य होता था कि भाई ये माता इन डॉक्टरों को क्या समझाती होगी, वो क्या समझाती होगी पता नहीं, लेकिन सचमुच वो डॉक्टर्स कोर्स करने के लिए सेंटर पर आते थे। तो निर्भय होकर के आप सेवा करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। दूसरी बात है कि डर कोई वस्तु या व्यक्ति में नहीं, आपके मन में है। कोई बाह्य वस्तु में डर नहीं है। हाँ, मैं ये सिद्ध करके बता सकता हूं कि अगर मैं यहां पर 12 इंच चौड़ा एक लकड़ी की बहुत लंबी पट्टी रखूं और उस पर आपको कहूं कि आप चलो, तो आप चल सकते हैं? चल सकते हैं? नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सुन सकते हैं? हाँ, सभी चल सकते हैं, परंतु 5 मंजिल ऊंची इमारत के ऊपर अगर वही पट्टी में रखूं और आपको कहूं कि अभी चलो, तो चल सकते हैं? क्यों? बात तो वही है, परंतु जब वह मंजिल पर चलना होता है तो आप सोचते कि गिर तो नहीं जाऊंगा, तो सचमुच गिर जाएंगे। तो इसलिए जिससे भी आप डरते हो वह वास्तव में सच्चा शेर नहीं है, वह तो कागज का शेर है, और परिस्थिति तो वास्तव में मुर्दे जैसी है। परिस्थिति में कोई जान नहीं है, परंतु हम हमारे विचारों से ही उसमें जान भरते हैं। परिस्थिति डर निर्माण नहीं करती, परंतु हमारी मनः स्थिति है वह वास्तव में डर निर्माण करती है। दूसरी बात याद रही? तीसरी बात है कि विचारों को परिवर्तन कर दो। वास्तव में आप जैसे विचार करते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप रोज पुराने कपड़े पहनते हैं तो उस पर कभी भी चाय नहीं गिरती है, परंतु जिस दिन आप ब्रांड न्यू कपड़े पहनते हैं उसी दिन चाय गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन आप डरते हैं, बार बार सोचते हैं चाय तो नहीं गिर जाएगी, चाय तो नहीं गिरेगी। ऐसे आपने 100 बार सोचा, इसलिए उसी दिशा में आप आकर्षित भी हुए। यह भी कहा गया है कि किसके घर में ज्यादा चोरी होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके घर में चोरी होती है उन्होंने ताला नहीं मारा है, कई बार तो उन्होंने 2-2 ताले मारे, फिर भी चोर उसी के ताले को तोड़ते हैं। क्यों? शायद वो ज्यादा सोचते होंगे कि चोरी तो नहीं हो जाएगी, चोरी तो नहीं हो जाएगी, तो इसलिए चोर तक भी वह वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि आप कोई भी चीज से दूर नहीं जा सकते, आप कोई भी चीज के नजदीक जा सकते हैं। आप कहेंगे कि भी कॉकरोच का डर नहीं लगे, कॉकरोच का डर नहीं लगे तो कॉकरोच आपके पास आएगा, परंतु आप यह कहेंगे कि मैं निर्भय हूं तो उल्टा कॉकरोच आपसे दूर भाग जाएगा। एवरेस्ट शिखर पर जो सबसे पहले पहुंचा था वह हिलेरी वास्तव में एक बार असफल हुआ था। उसने बहुत कोशिश की थी, बहुत नजदीक तक पहुंच गया था, परंतु एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंच सका। तो फिर एक बार एक क्लब में उसका भाषण था, तो भाषण के बाद लोगों ने पूछा कि जब तुम एवरेस्ट के शिखर तक नहीं पहुंच पाए तो तुम निराश नहीं हुए? उसने कहा, नहीं, मैं निराश नहीं हुआ। जब मैंने पूरी कोशिश की और सोचा कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो मैंने एवरेस्ट की चोटी से बात की। मैंने कहा, माउंट एवरेस्ट, देख, तेरी तो ऊंचाई बढ़ने वाली नहीं है, परंतु मैं दूसरी बार और अच्छी तैयारी करके आऊंगा और अपने आप को सुसज्जित करके आऊंगा और तेरे पर विजय प्राप्त करूंगा। और सचमुच दूसरी बार जब हिलेरी ने प्रयत्न किया तो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गया। तो ऐसे हमारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर तुम्हारे विचारों में ताकत है तो तुम हथेली पर हिमालय भी उठा सकते हो। तो इसलिए, हाँ, ताली बजानी है, बजाओ। हाँ, मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु ताली बजाना बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हाँ, एक्यूप्रेशर के पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, अच्छा। हाँ, कोई बोर करने वाली बात हो ताली नहीं बजाना, अच्छी बात हो तो ही बजाना। चौथी बात है कि मूल कारण को समाप्त कर दीजिए। डर का जो मूल कारण है उसे समाप्त करिए। हाँ, किसे किसे डर लगता है, हाथ उठाएंगे? नहीं लगता है? मैंने तो कहा सबको डर लगता है। अच्छा, हाँ, कोई भी 8 लोग स्टेज पे आएंगे, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आइए आइए आइए। हाँ, बहनों में से भी आ जाओ, 1-2 बहनें स्टेज पे आइए जल्दी, तो आप कुछ सीखेंगे। चलो, सब भाई आते, ठीक है, चलो सब भाई जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हाँ, 2-2 की जोड़ी बना लो, देखो सब नौजवान आए हैं। हाँ, 2 बहनें भी आ रही है, जल्दी आ जाओ बहनें। हाँ, 2-2 की जोड़ी बनाइए, हाँ, 2-2 के पार्टनर बनाइए, भले 1-2, हाँ यहां भी, हाँ जी, पार्टनर बनाए। अच्छा, भी डर लगता है ना, तो डर के बताओ, डर के बताओ, आपको नहीं लगता है? अच्छा, हाँ तो डर के बताओ। देखो, नहीं डर सकते, क्यों क्यों अभी डर नहीं लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगता है डर? क्योंकि कोई कारण नहीं है। इसलिए कहेंगे कि डर कभी भी बिना कारण नहीं होता है, परंतु जो कारण है वह अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अभी आपने जोड़ी बनाई है ना, आपके पास कोई चीज हो वो बहुत डर के अपने पार्टनर को दो। हाँ, डर डर के दो अपने पार्टनर को, दो दो। हाँ, एक जन यहां आ जाओ। हाँ, डर डर के दो, दो डर के, देखो डरते नहीं है, मैं डर के बताता हूं। हाँ, हेलो, देखो डर के दी तो गिर गई नीचे, वहां तक पहुंची ही नहीं। तो ऐसे वास्तव में जब आप डरते हो तब लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि निर्भय बनना चाहिए और जो डर का मूल कारण है उसे समाप्त कर दो। बहुत सारे कारण है, हमारे पास समय कम होने से मैं आपको सिर्फ 2 महत्वपूर्ण कारण बताता हूं। हाँ, भले बैठ सकते, थैंक यू। हाँ, 2 कारण आपको बताऊंगा। एक तो कारण है कि एक बुरा अनुभव, एक बार कोई बुरा अनुभव हो जाए, फिर जब उसके बारे में हम सोचते हैं या तो उसका सामना नहीं करते तो डर बढ़ता है। एक व्यक्ति लिफ्ट में फंस गया, बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया, फिर वह 6 मास तक कभी लिफ्ट में गया ही नहीं। उसे डर लगता था कि भाई मैं लिफ्ट में जाऊंगा फिर से लिफ्ट टक जाएगी, तो छह मास के बाद एक दिन उसने कोशिश की तो इतना डरा, इतना पसीना हुआ कि बीच में उसने लिफ्ट बंद कर दी। तो कोई भी डर अगर आप उसका सामना नहीं करते तुरंत तो वह बढ़ता जाता है। दूसरे एक व्यक्ति ने इसी प्रकार का प्रवचन चल रहा था तो प्रवचन के बाद उसने उस स्पीकर को एक प्रश्न पूछा तो स्पीकर ने कहा क्या बेकार प्रश्न है। तो इससे वह इतना डर गया कि वह कभी भी फिर आगे चल के प्रश्न है किसी को पूछता ही नहीं था। वास्तव में उस वक्ता को उस प्रश्न का जवाब नहीं आता था, इसलिए उसने कहा कि क्या बेकार प्रश्न है। तो इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति आए परंतु तुरंत उसका सामना करिए। दूसरी बार कहीं जाओ दूसरे वक्ता को भी जरूर प्रश्न पूछो तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि डर लगने का मूल कारण कईयों का जो व्यक्तित्व है वही डरावना होता है और उसका कारण है बड़ों की शिक्षाएं। कई बार एक मां ने अपने बच्चे को कहा कि तू बुद्धू है, तू कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। वो वास्तव में एमबीए हो गया, सबसे अच्छी डिग्री उसने प्राप्त कर ली लेकिन बिजनेस नहीं कर पाया क्योंकि वो डरता था कि मां ने कहा है ना कि मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकूंगा। तो इतना ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी वो 10,000 की आज नौकरी कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है। ऐसे ही दूसरे एक व्यक्ति को उसके पिता ने कहा कि तेरा बड़ा भाई बहुत निर्भय है, तू डरपोक है, तू कभी अकेला ट्रेन में नहीं जा सकेगा। तो वह सचमुच सोचने लगा कि मैं तो डरपोक हूं। आज वह बंबई से अहमदाबाद भी अकेला ट्रेन में नहीं जा सकता, कोई ना कोई उसके साथ जाता है। तो बड़ों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। अब देखो कई बार मां बाप बच्चों को क्या कहते हैं कि लड़कियां झाड़ पर नहीं चढ़ती हैं और लड़के रोते नहीं हैं। तो इसलिए लड़कियों में शक्ति हो सकती है कि वो झाड़ पर चढ़े परंतु वो नहीं चढ़ती, और लड़कों को कई बार रोना आता है परंतु बेचारे रोते नहीं है। तो ऐसे बड़ों की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण। चौथी बात है कि डरावनी परिस्थिति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। डर क्या है? वास्तव में डर एक मैसेंजर है जो यह संदेश लेकर के आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आप में से कईयों ने सुना होगा। बहुत छोटे से कद के थे, दुबले पतले थे, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे लेकिन फिर भी वो इतने निर्भय थे कि जब प्राइम मिनिस्टर बने तो बड़े बड़े लोग उनसे बात करने से डरते थे। तो इसलिए हमेशा ये पंक्तियों को दोहराइए, अगर आपको निर्भय बनना है तो इन पंक्तियों को दोहराइए। एक झरो था कहीं कमजोर सा पड़ा, हवा ने उसे उड़ाया तो तूफान बन गया। एक नन्हा सा बीज पड़ा धरती पर, गर्मी ने उसे तोड़ डाला तो वृक्ष यूं चढ़ा आसमान में। डरना ना, जमाने ने जिसे भी रोका वह बड़े से बड़ा इंसान बन गया। परिस्थितियां कैसी भी आए तो भी निर्भय हो जाओ तो उस वृक्ष की तरह आसमान तक पहुंच जाओगे। पांचवी बात है, जवाहरलाल नेहरू ने जब इंदिरा गांधी करीब 11 साल की थी तब एक पत्र लिखा था, सचमुच इस बात पर ध्यान देने जैसा है। उस पत्र में क्या लिखा था कि बेटे हिम्मतवान बनना, निर्भय बनना। निर्भय व्यक्ति को कैसी भी विकराल परिस्थिति रोक नहीं सकती है, निर्भय व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग निकाल लेता है। तो इसलिए कभी भी अनुमान नहीं करो और निर्भय बनते जाओ। बहुत सारा डर यह है क्योंकि हम अनुमान करते हैं कि कहीं कोई डांट तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसी बातें नहीं होती। छठी बात है कि डरावनी परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। छत्रपति शिवाजी के समय में नियम होता था, क्योंकि दुश्मन हल्ला करते थे, इसलिए 7 बजे के बाद किले के दरवाजे बंद हो जाते थे, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता है। एक दिन एक मां खेत में गई थी, उसको आने में थोड़ी देरी होगी, 2 मिनट की देरी होगी और दरवाजा बंद हो गया। उसने बहुत रिक्वेस्ट की दरबान को कि भैया दरवाजा खोल दे, मेरा छोटा सा बेटा घर में है, वह रोता होगा। पर उसने कहा नहीं, ये तो नियम है, हम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। तो अभी मां क्या करे, मां ने सोचा, मां धीरे धीरे चढ़ने लगी, बहुत सारी विकराल परिस्थितियां, पर चढ़ते चढ़ते उसे पैरों में कांटे लगे, बहुत तकलीफ हुई, परंतु किले को पार करके बेटे के पास घर पहुंच गए। दूसरे दिन शिवाजी को पता चला कि एक महिला है, उसने अपना किला चढ़ करके पार कर लिया है। तो उन्हें बड़ा डर लगा, लगा अगर यह महिला पार कर सकती है तो कल दुश्मन भी पार करके वार कर लेगा। तो उस महिला को बुलाया और कहा कि क्या तुमने ये किला पार किया था? क्या? हां, मेरा बेटा था तो उसके प्यार में मैं किले पर चढ़ गई। उसको कहा फिर से करके दिखाओ, नहीं अभी नहीं कर सकती हूं। उस समय क्योंकि चुनौती थी, बेटे के पास पहुंचना था, तो इसलिए किले पर भी आराम से चढ़ गए। और अगर आप कोई भी परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी क्षमता 10 गुना बढ़ सकती है। और जो लोग अपनी परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका स्लोगन होता है, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे, कि आने दो मौत को भी सामने। रिपीट करेंगे ये स्लोगन, सचमुच रिपीट करो। जब भी डरावनी परिस्थिति आए इस स्लोगन को रिपीट करो, तो आप देखेंगे कि डर भाग जाएगा। 7वीं बात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि डर से मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है डर का सामना करिए। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है कि जब आप डर का सामना करते हैं तो डर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जब भी डर आए तुरंत डर का सामना करिए, डर से दूर नहीं भागिए। 3-3 शब्दों की 2 लाइनें याद करिए, इंग्लिश में है परंतु आप समझ जाएंगे। ये 2-2 लाइनें आप रिपीट करेंगे तो भी हिम्मत आ जाएगी। या 3-3 शब्द है, पहला है फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। समझ गए? सामना करो, लड़ो और खत्म कर दो। दूसरे 3 शब्द है ग्रीट इट, मीट इट एंड बीट इट। डर आए तो कहो हेलो कैसे हो, फिर उसको मीट करो और अल्टीमेटली उसे हरा दो। और फेस कैसे करो, सोचो कि यही एक रास्ता है, दूसरा कोई पीछे हटने का रास्ता ही नहीं है। रोम के लोगों ने इंग्लैंड पर चढ़ाई की और वह कैसे आए, शिप्स में आए सभी। और जब ये शिप्स में आए और इंग्लैंड पर चढ़ाई की तो वह जो उसका कैप्टन था बहुत समझदार था, जैसे ही सारी सेना शिप से नीचे उतरी उसने सभी शिप्स जला दिए। क्यों जला दिए? क्योंकि सोचा कि भी दुश्मन को देख के कुछ लोग डर के पीछे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि शिप्स तो जल गए हैं तो उससे अच्छा तो लड़ो, लड़के मरना और भी अच्छा है। तो इसलिए वह लोग लड़े और विजय भी प्राप्त कर ली। और सबसे सरल और अच्छी बात है कि अगर आप निर्भय बनना चाहते हो तो अपनी जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है उसको सही बनाओ। मैंने देखा है कि 30% लोग गलत सांस लेते हैं, कि जिसके कारण सही मात्रा में ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता है और इसके कारण तनाव और डर दोनों होते हैं। आपको सीखना है सही सांस लेना कि नहीं सीखना है? सीखना है तो सब खड़े हो जाएंगे, हाँ कोई गिरेंगे नहीं ना, भले एक बार खड़े हो जाओ। हाँ अब अपना एक हाथ पेट पे रखिए, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा ही टाइम है हमारे पास। अपना एक हाथ पेट पर रखिए, पेट पर रखिए एक हाथ, पेट पर, हाथ ऊपर नहीं करना है, पेट पे रखना। और अभी यह पता करो कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस लेंगे तो पेट आगे आता है या अंदर जाता है? हाँ नहीं, पता करो, मुझे जवाब नहीं दो। पता किया? कौन कौन कहते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, हाथ उठाओ। आप सब गलत सांस ले रहे हैं। वास्तव में छाती और पेट के बीच में बहुत बड़ा पर्दा है। जब आपको अच्छा सांस लेने हो तो उस पर्दे को नीचे धकेलेंगे तो क्या होगा, पेट आगे आएगा। और उसका सरल सा तरीका बता देता हूं, फिर आप अभ्यास करना, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि सही सांस कैसे लेना होता है। सरल सा अभ्यास करिए, एक बार सांस को बाहर आने दो, और जब सांस बाहर आ जाता है तब एक सेकंड पेट को अंदर खींचो और फिर सांस लो, तो जब सांस लेंगे तो पेट आगे आएगा। यह वास्तव में सांस लेने का सही तरीका है। भले बैठिए, आठवीं बात है, हाँ ध्यान से सुनो, आवाज नहीं करो आपस में, बस अभी और हमारे पास थोड़ा सा ही समय है। आठवीं बात है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ढूंढने के लिए निकला था। जब वह भारत को ढूंढने के निकला तो एक साल बीत गया, दो साल बीत गए, उनके पास जो खाना था वो भी सारा खत्म होने लगा, तो उसके जो साथी थे सभी बहुत गुस्से में आ गए, उनका आपस में झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई कि ये तो हमको मार डालेगा, भारत तो मिलने वाला नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति आई तो कोलंबस खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़ के अपने साथियों को कहा कि मुझे सिर्फ एक महीने का समय दो, अगर एक महीने में हम भारत को नहीं ढूंढ पाए तो हम वापस चले जाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि तीन दिन में वह अमेरिका पहुंच गए, तीन दिन में उसने अमेरिका को ढूंढ निकाला। तो ऐसे कैसी भी विकराल परिस्थिति हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। तलवार की कीमत बढ़िया मयान से नहीं, उसकी धार से होती है। तलवार की कीमत बढ़िया मयान से नहीं, उसकी धार से होती है। कपड़ों की कीमत चमकदार रंग से नहीं, उसकी तार से होती है। कहीं भी देखो मूल मोल का होता है, छिलकों का नहीं। आदमी की कीमत पैसे से नहीं, उसके निर्भय व्यवहार से होती है। तो इसलिए जीवन में निर्भय बन जाओ। नौवीं बात है कि दृष्टिकोण को बदली कर दो। बस सारा खेल दृष्टिकोण का है। हाँ कोई भी चीज को ऐसे उल्टी पकड़िए, पकड़िए सभी, आपके पास कोई भी चीज हो ऐसी उल्टी पकड़िए। हाँ अभी देखो, आप हाथ को छोड़ देंगे तो क्या होगा, छोड़ देंगे तो गिर जाएगी। हाँ परंतु ऐसे पकड़िए, हाँ अभी हाथ को छोड़ दीजिए तो नहीं गिरती है, क्यों? क्योंकि आपने सही पकड़ा है उसे। वैसे कोई भी परिस्थिति में आपका सही दृष्टिकोण होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर दबाव नहीं देना पड़ेगा। और दृष्टिकोण में इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो आसमान में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में भी कमल तो चांद में भी दाग देखा। तो ये आपका दृष्टिकोण है कि आप कीचड़ में कमल देखते हैं या चांद में दाग देखते हैं। एक लुटेरा ऋषि वाल्मीकि कैसे बन गया, एक लुटेरा वाल्मीकि कैसे बन गया। उसने यह समझ लिया, उसे एहसास हो गया कि मेरे पापों के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। ऐसे ही आप एक बार महसूस कर लो कि डर से कोई फायदा नहीं है तो आप सहज ही निर्भय बन जाएंगे। दसवीं बात है कि बुद्धि को अच्छी तरह से समझा दो, यह सारा खेल बुद्धि का है। कहते मन वह जंगली घोड़ा है और बुद्धि उसकी घुड़सवार है जो उसे कंट्रोल करती है। एक 10 साल की लड़की का देहांत हो गया तो उसके पिता बहुत रोते थे, 6 मास तक उसके पिता रोते थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि बहुत सारी परियां हैं, उस परियों के बीच में उनकी बेटी भी है परी के रूप में, और जो सभी परियां हैं उनके पास मोमबत्तियां हैं, यह मोमबत्तियां जली हुई है, परंतु उसकी बेटी के हाथ में जो मोमबत्ती है वो बुझ गई है। तो उसने अपनी बेटी को पूछा कि बेटे तुम्हारी मोमबत्ती क्यों नहीं जल रही है। तो उन्होंने कहा डैडी यह सब मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, वो मेरी मोमबत्ती जलाने की कोशिश करते हैं परंतु तुम्हारे आंसुओं से मोमबत्ती बुझ जाती। दूसरे दिन से उनने रोना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बुद्धि को समझ में आ गया कि अगर मेरे रोने से बेटी के जीवन में तकलीफ हो रही है तो मुझे रोना नहीं है। ऐसी तर्क से अगर अपने आप को आप समझा दीजिए तो डरने की कोई बात नहीं। 11वीं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने संस्कारों को परिवर्तन कर दो। क्यों डरते हो? क्योंकि डर के संस्कार है आप में। बुद्धि को तो तर्क से समझाएंगे परंतु संस्कारों को कैसे परिवर्तन करेंगे? मन तो सोचता है, बुद्धि तर्क करती है, परंतु संस्कार सोचते नहीं, संस्कार तर्क भी नहीं करते, संस्कार विवाद भी नहीं करते। तो क्या करते हैं? संस्कार काम करते हैं, जो आपने उसमें भरा है वह रात दिन करते रहते हैं। तो इसलिए संस्कारों को परिवर्तन कर दो। और क्या करो? संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे कि जब योग की गहराई में आप जाते हो, योग के अंत में बहुत ही सरल विचार अपने आप को दो। देखो 6 बातें करनी है अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है तो। योग की गहराई में ये 6 बातें करिए कि जो विचार देंगे वह सरल विचार दो कि मैं निर्भय बन रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। सकारात्मक विचार दो, यह नहीं कहो कि मुझे चूहे का डर नहीं लगेगा तो आप ज्यादा डरेंगे, परंतु यह कहो कि मैं निर्भय बन रहा हूं, चूहों का सामना कर सकता हूं। वर्तमान में विचार दो कि अभी अभी मेरे में निर्भयता आ रही है। साथ साथ चित्र भी निर्माण करो कि सचमुच मैं निर्भय बन गया हूं, क्योंकि संस्कार व चित्रों की भाषा समझते हैं, विचारों को नहीं समझते। आप जैसा चित्र निर्माण करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। 5वीं बात उसको फील भी करो, सचमुच सोचो कि मैं निर्भय बन गया हूं, कल से मैं अंधेरे में जा सकता हूं, किसी भी अनजान व्यक्ति से भी बात कर सकता हूं। जब आप फील करेंगे तो वह बात आप में आ जाएगी। और 6वीं बात कि उन्हीं विचारों को प्रतिदिन दिन में 3-4 बार अच्छी तरह से दोहराइए, करीब 6 सप्ताह तक इन विचारों को दोहराइए, तो आप देखेंगे 6 सप्ताह में आपके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। न केवल निर्भयता है, यहां बाबा मिलन के लिए आए हो तो जो भी आप संस्कारों में परिवर्तन करना चाहते इन 6 बातों को अपनाना, तो नेचुरली आपके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। बदलो संस्कार तो नया संसार पाओगे, बन जाओ निर्भय तो सफलता पाओगे। सीधी सादी बात है कीजिए कबूल, आम कहां से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। तो संस्कार परिवर्तन के पीछे लग जाइए। और बारहवीं बात है कि निर्भय बनना हो तो सबसे अल्टीमेट बात, हाँ अभी पीएचडी की पढ़ाई है, क्या है पीएचडी की पढ़ाई, कि संस्कारों को परिवर्तन करना है तो परमात्मा को साथी बना लो। अभी क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, बाइबल में बहुत अच्छी बात आती है जो कहती है कि When God is with you, nobody can be against you। जब भगवान आपके साथ है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। और सचमुच बाबा तो साथ है ही है, बाबा हमेशा साथ निभाता है, परंतु हमारे पर है। एक बार कबीर जी चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे, उस समय चक्की से आटा पीसते थे ना, तो चक्की चलाते चलाते रोने लगे। और रोते रोते उन्होंने एक दोहा लिखा, क्या दोहा लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या देखा कि दो पाटन चलती है तो उसके बीच में कोई दाना साबुत नहीं बचता है। उस समय उनका बेटा कमाल भी वहां बैठा था, वो भी देख रहा था। वो देखता गया फिर खड़े होके नाचने लगा। नाचते नाचते उसने भी एक दोहा लिखा, क्या लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठियाई, जो कील से लगा रहे उसे काल कभी न खाई। समझ गए ना कि जो दाना कील से लगा रहा उसे काल ने नहीं खाया। तो ऐसे बस बाबा के साथ लगे रहो तो कोई डरने की बात ही नहीं है। और ध्यान की स्थिति में, जैसे मैंने कहा कि अभी हम भी थोड़ा सा योग करेंगे कि जिसके बाद निर्भयता के कैसे विचार देने हैं, वह भी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा। यह छोटा सा मशीन है कि जिसके द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि आपका ध्यान लगा या नहीं लगा। तो जब हम ध्यान करेंगे तो मैं कोई भी दो व्यक्तियों ऊपर हम चेक भी कर सकते हैं। हाँ, किसी को करना है, किसको करना है, हाथ उठाओ। अच्छा, कौन आएगा, अच्छा किसको बोला, चलो एक भाई तो आ ही गए। हाँ, बहनों में से कोई आ जाओ भले। हाँ, एक बहन आए, किसी ने हाथ नहीं उठाया बहनों में, बहने डरती हैं, भले भले आप आ जाओ, देखो नजदीकी बेटियां, बस बस एक, हाँ बस एक ही, एक भाई एक बहन, बाद में किसी को इंटरेस्ट होगा तो हम कराएंगे। हाँ, तुम बेटे भी नीचे, हाँ फिर इसके बाद जब क्लास पूरा हो जाए अगर किसी को इंटरेस्ट हो, या तो कल भी मैं यहां हूं, आप चेक कर सकेंगे। हाँ, अभी इसके जो पॉइंटर्स लगाएंगे तो पहले तो वह मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगा, पहले लगा देते पॉइंटर्स। आप बैठिए, हाँ आप भी बैठो। हाँ, तो जो हमारे दो सेवाधारी भाई है वह क्या कर रहे हैं कि उसमें दो इलेक्ट्रोड्स है, वो इलेक्ट्रोड दो उनकी उंगलियों पर लगा रहे हैं, उंगलियों को थोड़ा गीला करके फिर उस पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं। और जब वो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे तो जो उसमें एक पॉइंटर है वो मैक्सिमम लेवल पर आएगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, शॉक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो चेकिंग करता है। यह एक मिली एम्पियर मीटर है कि जब पॉइंटर को हम 100 लेवल पर एडजस्ट कर देंगे और तब जब उनका ध्यान लगेगा तब ही धीरे धीरे वह 0 लेवल पर आ जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम पर आ जाएगा। और उसमें एक सायरन भी होता है, तो वह जब 100 पर होगा तो वह सायरन बजेगा, जब वह 0 पर चला जाएगा तो सायरन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मशीन सहज मिलती है इसलिए कई लोग अपने आप भी प्रयोग करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। हाँ जी, अभी हमने सेट कर लिया है और हम सब भी योग करेंगे, आप करेंगे ना, थोड़ा सा शरीर के अंगों को हम रिलैक्स कर देंगे और फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। अंत में मैं आपको विचार दूंगा जो कहा कि निर्भय बनने के लिए जो विचार है, मैं भी बैठता हूं ताकि हम सबका अच्छे से योग। ओम शांति। सभी कमर को सीधी रख के बैठेंगे, हाथों को ऐसे मोड़ दीजिए, और थोड़ा समय हम शरीर के अंगों को शांत करने की भी कोशिश करेंगे कि जिसका आधार है कि मन के द्वारा सूचनाएं देने से भी शरीर के अंग शांत होते हैं। और फिर निर्भय बनने के लिए जो कुछ बातें मैंने आपको बताई उसका भी हम चिंतन करेंगे। सारे शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। सारा शरीर शांत हो रहा है। हाथ की उंगलियां एकदम हल्की और आराम की स्थिति में है, एकदम आराम की स्थिति में है। हाथ की उंगलियां हल्की हो रही है, शांत हो रही है, शांति। हाथ का पंजा भी हल्का और शांत हो रहा है, शांति, एकदम आराम की स्थिति में है। दोनों बाहें भी शांत और आराम की स्थिति में है, बिल्कुल हल्की हो रही है, रुई की तरह हल्की शांत हो जाती है। पेट का हिस्सा भी हल्का हो रहा है, एकदम शांत हो रहा है, रिलैक्स। हृदय भी शांत और नियमित हो रहा है। चेहरा भी एकदम शांत हो रहा है। जैसे जैसे शरीर के अंग शांत होते हैं, मन भी हल्का और शांत होने लगा है। यह शरीर तो केवल साधन मात्र है, मैं अविनाशी आत्मा शरीर रूपी साधन का उपयोग करने वाली चेतना, मैं सिर्फ एक एक्टर के रूप में इस विशाल सीरियल में अपना पार्ट बजा रहा हूं। वास्तव में मेरा घर तो इस साकार दुनिया के उस पार परम धाम है। परम धाम में कोई कर्म नहीं, आवास नहीं, पूर्णतः शांति ही शांति। इस सितारों की दुनिया में कोई संकल्प भी नहीं, मैं आत्मा निरसंकल्प स्थिति में स्थित हूं। यहीं पर मेरे प्यारे ते प्यारे शिव बाबा भी, शांति के सागर शिव पिता से मैं आत्मा शांति की किरणें प्राप्त कर रही हूं। शिव बाबा प्रेम के सागर है जो मुझे निस्वार्थ प्यार दे रहे। मैं जैसा भी हूं, एक बाबा ही मुझे निस्वार्थ प्यार देते हैं। शिव पिता शक्ति के सागर है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। सर्व शक्तियों से भरपूर हूं, सदैव मैं निर्भयता के ही विचार करूंगा। हर परिस्थिति का सहज ही सामना करूंगा। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूं। अब मुझे समझ में आ गया है कि परिस्थितियां डर निर्माण नहीं करती। मैं अपनी मनःस्थिति को ऐसी बनाऊंगा कि हर परिस्थिति में निर्भय होकर उसका सामना करूं। डर से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है उसका सामना करना। अब मुझ में वह हिम्मत आ गई है। मैं सकारात्मक चिंतन के द्वारा हर परिस्थिति का सामना करूंगा। मैं निर्भय बनता जा रहा हूं। सदैव बाप दादा रूपी कील को साथ रख निश्चिंत रहूंगा। प्रतिदिन इस प्रकार से योग करके मैं पूर्णतः निर्भय बन जाऊंगा। ओम शांति शांति शांति। और जैसे कहा कि योग के अभ्यास के अंत में वह सूचनाएं दीजिए कि जिससे थोड़ा सा भी 5% भी कोई बात का डर हो तो उसे भी खत्म करते। और अंत में यह दो पंक्तियां हैं उसके द्वारा समाप्त करता हूं कि क्या करना है। निर्भय बनेंगे हम तो क्या होगा। एक तो इसके विषय में, दूसरा आप अव्यक्त बाप दादा के मिलन के लिए आए हैं तो क्या करना है उसका संदेश है। जिंदगी जी तो ऐसी जी जो दिल शाद रहे, तू दुनिया से चला जाए पर दुनिया को तेरी याद रहे। ऐसे कर्म करो कि सभी को तुम्हारी याद रहे। और अंत में क्या करना है, ऐसी करो तपस्या, यहां पर आए हो तो ऐसी करो तपस्या जो कमाल हो जाए, यह बाबा का मिलन यादगार हो जाए। ओम शांति।
प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर